आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
अगर हम ये सोचें कि हमारे किसी प्रिय रचनाकार पर इस तरह के जो व्याख्यान मालाएं हैं वो हमें क्या देती, यहाँ बैठे 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 मुझे ये चीज अनुभव हुई कि हम अपने रचनाकार को कितना कम जानते हैं, और जब उनके साथ जीवन के थोड़े थोड़े हिस्से बिताए हुए लोग एक जगह जमा होते हैं, उनकी कला पर अलग अलग विचार रखने वाले लोग एक जगह जमा होते हैं, तो उन सबको सुनते हुए उस हमारे प्रिय रचनाकार का एक बृहत्तर और उदात्त चरित्र हमारे सामने आता है, तो ऐसी गोष्ठियों की यह भी एक सफलता है। अगले वक्ता के रूप में हम नरेश जी को सुनेंगे। नरेश जी हिंदी ही नहीं सभी भारतीय भाषाओं के वरिष्ठ कवियों में से एक हैं, लेकिन जो उनका काव्यात्मक अवदान है वो बहुत संकोच से भरा हुआ है। दो कविता संग्रह हैं उनके, समुद्र पर हो रही है बारिश और सुनो चारुशीला। नरेश जी को पहल सम्मान, ऋतुराज सम्मान, उत्तर प्रदेश शासन का साहित्य भूषण सम्मान, मुकुट तिवारी सरोज सम्मान, अनेक सम्मान मिले। जाहिर है कि बहुत ही अच्छे और वरिष्ठ कवि हैं, तो सम्मानों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए उनको, नहीं दी गई। इससे बड़ी बात यह है कि वो बहुत प्रिय हैं कविता के संसार में और साहित्य के संसार में, बहुत उन्हें हार्दिकता से लिया जाता है। और अगर हम श्रीकांत जी और नरेश जी की कविताओं में किसी एक साम्य को खोजें तो जो लय को लेकर है आग्रह नरेश जी के यहाँ, वो चीज़ आपको श्रीकांत जी के यहाँ भी मिलेगी। तो आधुनिक कविता ने बहुत जोर से ये कोशिश की कि वो लय से थोड़ी दूर चली जाए, लेकिन नरेश जी, श्रीकांत जी और यहाँ तक कि मुक्ति बोध, उनके यहाँ भी ये कोशिश दिखाई जाती है, दिखती है कि जो संगीत का तत्व है जो कविता को और स्मरणीय और मनोरम बनाता है, उसका आधुनिक और उत्तर आधुनिक संदर्भों में फिर से पुनराविष्कार किया जाए। नरेश जी ने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और प्रोफेशनल ढंग के संगीतकार रहे हैं, बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं, ताल और लय की बेहतरीन समझ रखते हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीकांत जी के बारे में, जो हमारी जानकारी है, जो हमारी संवेदना है, उसमें कुछ विस्तार करते हुए अपनी बातें रखते हैं। श्री नरेश जी,
अध्यक्ष महोदय श्री संजय अलंग जी और मंच पर मेरे तमाम साथी और सामने बैठे हुए तमाम मेरे पुराने मित्र, जिनमें दुर्गा प्रसाद अग्रवाल भी हैं और अन्य छोड़कर यहाँ चले आए देवेंद्र, बड़े कथाकार हैं वो भी हैं, उन सबको नमस्कार करते हुए अब ये कविता पंक्ति श्रीकांत वर्मा की सुनाई गई कि मैं अब थर जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है सभी लोग अब थर ही जाना चाहते हैं और कुछ तो चले भी गए हैं, तो घर जाने के लिए मैं बीच में ज़्यादा देर के लिए आना नहीं चाहता। श्रीकांत वर्मा की बहुत प्रिय स्मृतियाँ क्योंकि विनोद भारद्वाज ने जैसा बताया मेरे साथ भी है। मुझे जब लीबिया में जाना था और भारत सरकार से मुझे अनुमति नहीं मिल रही थी, तो श्रीकांत वर्मा याद आए, विनोद भारद्वाज से ही फोन कराया कि हम मिलना चाहते हैं। उन्होंने मेरा कागज नहीं देखा, देखा ये बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते, ये बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, इनके जाने से फॉरेन एक्सचेंज आएगा भारत में, इनके जाने से नया अनुभव आएगा, इनके जाने से जगह खाली होगी तो किसी का प्रमोशन हो जाएगा, किसी की भर्ती हो जाएगी, इनको तुरंत भेज देना चाहिए। और बोले कि ये जाके आप दे दीजिए तो भैया से मैं कल मिलूंगा और तुम्हें यही हुआ, मुझे तुरंत अनुमति। ऐसे कितने प्रसंग हैं विनोद कुमार शुक्ल भी कह रहे थे कि मैं जाकर के मिलने वालों की भीड़ में बैठ गया और एक स्लिप मैंने भिजवा दी। विनोद कुमार शुक्ल राजनांदगांव, वहाँ बड़े बड़े एमपी और एमएलए और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री जाने कौन कौन बैठे थे। थोड़ी देर बाद मुझे वो बुला ले गया आपके लिए। मैं थोड़ी देर में ही लौट आया तो अर्जुन सिंह मुझे बड़े घूर के देख रहे थे कि ये कौन आया है। बस साहित्य के प्रति, मनुष्यता के प्रति, अपने निजी परिचय जो कविता के जरिए था उसके प्रति इतने संवेदनशील थे। उसके बहुत सारे नमूने हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। महेश वर्मा ने और शुरू में भी और बाद में एक बात कही वो लय के बारे में। श्रीकांत वर्मा गीतकार थे शुरू में। उस समय हर एक गीत से ही हर कवि की परीक्षा होती थी तो वो छंद में लिख कर दिखाए। अभी तो गद्य में कविता लिखी जाती है, सिर्फ हिंदी की नहीं, सारी दुनिया की भाषाओं की कविता गद्य में, तेज गद्य में, और बहुत अच्छी कविता लिखी जाती है। गद्य बहुत ताकतवर चीज है लेकिन कविता में गद्य को साधना लगभग असंभव होता है। लय के साथ बहुत आसानी भी होती है और बहुत कठिनाई भी होती है, लेकिन लय के बिना तो जीवन चलता नहीं। लय के बिना कोई यंत्र नहीं चलता। दिल की धड़कन अगर थोड़ी हल्की हो जाए तो क्या स्थिति होगी। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, और अगर ये धड़कन दुगनी तिगनी हो जाए तो क्या होता है, छुट्टी गए। ये जो लय है दिल की धड़कन की, इसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसके बिना कोई मशीन नहीं चलती। लेकिन कविता तो मशीन नहीं, फिर भी कुछ ऐसा है कविता के अंदर। अभी विनोद कुमार शुक्ल ये कह रहे थे जब उनसे पूछा कि आप तो लय में लिखते नहीं कभी, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, कविता का हर शब्द और हर पंक्ति गद्य में होती है, गद्य में होती है, लेकिन जैसे ही कविता पूरी होती है वो कविता की भाषा हो जाती है। जैसे लहर पर लहर आती है, कविता की पंक्ति पर पंक्ति आती है। ये स्लिप कह रही है कि बस समाप्त करिए, तो मैं समाप्त करता हूँ। लेकिन ये पुरानी स्लिप है, ये मेरे फिर भी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत अच्छे वक्तव्य हो चुके हैं, संजय जी का वक्तव्य भी होना है, तो मैं इस तत्व को रेखांकित कर दूं। ये कविता देखी होगी आपने, युद्ध होगा तो मैं ही मारा जाऊंगा, और नहीं होगा तो भी मैं मारा जाऊंगा। उस युग में मुझे अश्वत्थामा कहते थे, उस युग में मुझे श्रीकांत वर्मा कहते हैं। ये पंक्ति इसमें नहीं है, लेकिन श्रीकांत वर्मा इस युग में मुझे कहते हैं। अगर वो ऐसा कहते तो उसका मतलब श्रीकांत वर्मा नहीं होता, आप सब होते, आप सब। ये बात उनके अंदर है। जहां तक लय के तत्व की बात है, वो तो गद्य में ही लिखते थे। उनकी सारी कविताएं जिनकी हम याद करते हैं, जिनको बहुत अच्छी तरह से गीत चतुर्वेदी ने रेखांकित किया, वो सारी कविताएं गद्य में लिखी हुई है। लेकिन उनके अंदर जो लय का तत्व है वो छूटे नहीं छूटता। सुनिए, वैशाली के बदले केवल वैशाली ही मिल सकती है, ये तो नए नए वैशाली से आने वाले पूछ रहे हैं वैशाली की राह कहाँ है। चार मात्रा की सहरवा ताल में है ये पंक्तियाँ। वैशाली से आने वाले पूछ रहे हैं वैशाली से आने वाले पूछ रहे हैं वैशाली की राह कहाँ है। वैशाली के बदले केवल वैशाली ही मिल सकती। जागे नखी नखे दिन जागे नखी नखे दिन एक दो तीन चार एक दो तीन चार। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। जागे नखी नखे दिन जागे नखी नखे दिन दा ये वो छंद में लिखी हुई कविता है। वो नागार्जुन की कविता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया तो छंदबद्ध है और ये तो गद्य में लिखी हुई कविता है। लेकिन दोनों कविताएं कहरवा ताल में। हमारे जो बड़े आलोचक हैं वो कहते हैं लय लय एक अमूर्त शब्द है एक साधारणीकृत शब्द है। लय के डिजाइन होते हैं इसे ताल कहते हैं और वो ताले अलग अलग होती हैं। जैसे इस कविता की ताल कहरवा है तो दूसरी कविता की ताल देती है श्रीकांत वर्मा। कौशल में विचारों की कमी है। एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन एक दो तीन चार एक। कौशल में विचारों की कमी है। कौशल अधिक दिन टिक नहीं सकता। साधना दीना दीना साधना दीना दीना एक दो तीन एक दो तीन चार। कौशल में विचारों की कमी है। कौशल अधिक दिन टिक नहीं सकता। साधना दीना दीना ये कौन सी ताल है। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज। दादीना दीना दीना एक दो तीन एक दो तीन चार एक। ये श्रीकांत वर्मा गद्य में लिखते हैं। गद्य के ही कवि हैं लेकिन वो कहां से जो लय की नींव है जो बुनियाद में है लय जिसके बिना जीवन संभव नहीं है तो कविता कैसे संभव होगी। लेकिन जो गद्य की लय है वो उसी तरह से नहीं होती जैसी मैं बता रहा हूँ। वो अनायास आ गई है अनायास आई है तभी तो बता रहा हूँ। और कितनी पंक्तियां आप चाहते हैं तो मैं बस बता रहा हूँ। ये मुक्तिबोध लिखते हैं इसी लय में कई तरह के तालों में। असल में लय नहीं ताल बोलना चाहिए। ओ मेरे सिद्धांत वादी मन अब तक क्या किया जीवन क्या दिया दिया बहुत ज्यादा दिया बहुत कम मर गया। तो कितनी कविताएं हैं वहां से अगर शुरू करते हैं मुक्तिबोध तक आते हैं। मुक्तिबोध के बाद अकेले पर आते हैं उसके बाद रघुवीर सहाय और केदारनाथ सिंह पर आते हैं कुंवर नारायण पर आते हैं और उससे भी नीचे आते हैं। तो कितने कवि हैं श्रीकांत वर्मा से गुजरते हुए जो अभी भी ताल के डिजाइन के भीतर ही रहकर कविता लिखते हैं। कभी कभी ये गुस्ताखी मैं भी करता हूँ श्रीकांत वर्मा से प्रभावित। और आप सबसे आप सबकी जो जो लय है जो मुझे बांधती है जिसके चलते मैं दोबारा यहाँ आ गया हूँ। एक बार आ चुका हूँ तबीयत ठीक नहीं थी उसी लय के निरंतरता में मैं आपके सामने। नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।